रामू महातेजा। राम जी ने विचार किया कि हाथ से तो यह पकड़ में आने वाला नहीं है और अब इसको तो बाण के द्वारा ही पकड़ करके मार सकते हैं। अब राम जी ने उस पर निशाना लगाया। सूर्य के किरण के समान तेजस तेज धार वाला अपना जो धनुष था वो बाण था वो बाण धनुष के ऊपर चढ़ाया और राम जी महाराज उस पर निशाना लगाते हैं। परंतु निशाना लगावे कैसे, वो तो कभी छिपता है कभी प्रकट होता है, पर वही निशानेबाज लोग होते हैं वो जान लेते हैं कि इस प्रकार से यहाँ छिप सकता है, छिपने के बाद इस गति से आगे जा सकता है। इस प्रकार से राम जी महाराज ने फिर उस मृग का ठीक निशाना लगा करके एक जलता हुआ अपने हाथ में बाण लिया जो कि ब्रह्मा जी ने बनाया था, वो बाण अपने हाथ में लेकर राम जी महाराज ने निशाना लगा करके उस बाण को छोड़ दिया और वो बाण सनसनाता हुआ मरीज के हृदय में जाकर के लग गया। मरीज उस समय में 3 ताल ऊंचा उछला और ऊंचा उछल करके जोर से उसने नाद किया। मरते मरते मरीज ने राम जी के स्वर के अंदर स्वर मिलाता हुआ माने स्वर के वह राम जी जैसा ही स्वर था वैसा स्वर लेकर हे सीते हे लक्ष्मण ऐसे राम जी के स्वर में वो बोला और वापिस जब वो जमीन पर गिरा तो अपने राक्षस रूप में आ गया और राक्षस रूप में आकर के वो वहां पर जो है मर गया। राउस मारीच ने सीते और लक्ष्मण ये इसलिए कहा कि दूर बैठा हुआ रावण उसको खूब अच्छी तरह से समझ लेवे और उसने इसलिए कहा कि लक्ष्मण है वो सीता को छोड़ करके राम जी के पास आ जाए और रावण सीता को हर के ले जाए। इस प्रकार से राक्षस की चाल फलीभूत हो गई। चक्रेशुस महाकायम मरते मरते मारीच अपने असली शरीर में आया, विशाल उसका शरीर हो गया। राम जी महाराज ने उसके शरीर को देखा, वो थोड़ी देर तो छटपटाया और अंत में वो समाप्त हो गया। परंतु राम जी महाराज ने मन से विचार किया, क्यों हो ये मारीच तो भाई बड़ा मायावी था, जैसे इसने माया से मृग का शरीर बनाया ऐसे इसने माया से मेरी आवाज भी बना ली, लक्ष्मण का नाम लिया सीता का नाम लिया। ओहो सीता और लक्ष्मण के नाम लेने का कारण क्या हो सकता है। राम जी महाराज ने कई देर तक विचार किया, ये सीता को डराने के लिए किया है, ये लक्ष्मण को डराने के लिए किया है। सीता और लक्ष्मण डर जाए और वो भयभीत हो जाए, ये राक्षसों की माया ऐसी क्यों हुई। ओहो क्योंकि मैंने राक्षसों से बैर ले रखा है, बैर मोल ले रखा है, इसलिए राक्षसों ने देखा कि जैसे भी ये कष्ट पाए वैसा करे। परंतु सीता और लक्ष्मण पर क्या बीतेगी, ये तो मुझे जल्दी जाकर के देखना चाहिए। राम जी महाराज जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में वे बड़ी तीव्र गति से अपने कुटिया की ओर रवाना हुए और उस राक्षस का तो वो मृग रूप वहीं पर बदल गया और वो मर गया। और राम जी महाराज ये समाचार सुनाने के लिए जल्दी जल्दी लक्ष्मण और सीता के उस आश्रम में आने की तैयारी आई रहे हैं। इधर भाई उसका आर्त स्वर सुन करके सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा, गच्छ अरे देवर जी आप जाइए, देखो राम जी के स्वर को आपने नहीं पहचाना, मेरा तो हृदय अपना स्थान छोड़ रहा है, मेरे प्राण शरीर से निकल रहे हैं। देखो आर्य पुत्र के क्या हो गया, देखो उन्होंने किस प्रकार से तुम्हारा और हमारा नाम लिया है, बहुत बड़ी विपत्ति आई तब वो ऐसा बोलते हैं, नहीं तो ऐसी विपत्ति में कभी आपने उनका इस प्रकार से घबराते हुए बोलना सुना, इसलिए जल्दी जाइए, आप अपने साथ में बाण ले जाइए और तलवार ले जाइए, किसी राक्षस ने उनको पकड़ लिया है। ओहो जिस प्रकार से सिंगों के बीच में कभी कोई जो है सांड घिर जाए ऐसे कहीं राम जी घिर गए होंगे, जल्दी जाओ तुमको बुला रहे हैं, जल्दी जाओ लक्ष्मण जी जल्दी जाओ। लक्ष्मण जी महाराज ने कोई सुनने की परवाह नहीं की। सीता जी ने फिर कहा, लक्ष्मण सुनते नहीं हो, तुम अपने भाई के साथ परिवार छोड़कर के यहाँ आए हो उनकी सेवा के लिए और तुम मेरी बात मानते नहीं हो। भाई की घबराई हुई बात को सुनकर के भी तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आया। ओह, तुम तुम्हारे भाई के रूप में भाई नहीं हो, तुम अपने भाई के परम शत्रु हो। तुम इसी अवस्था को बनाने के लिए ही यहाँ आए थे। तुमने ये सोचा कि कहीं कहीं जंगल के अंदर राम राक्षसों से घिर जाएगा और जब राम राक्षसों से घिर करके मर जाएगा तब मैं सीता को प्राप्त कर लूंगा। तो राम के पीछे नहीं आया है, तो मेरे पीछे आया है। तो राम के विनाश में तू मुझे अपनी स्त्री बनाना चाहता है, ये तेरे मन में लोभ है। लोभा तुम मत कृते नूनम, इसी कारण से देखो राम की घबराई हुई आवाज को सुनकर के भी तेरे मन में कोई घबराहट नहीं होती। देखो व्यसनम ते प्रियम मन्ये स्नेहो भ्रातरी नास्ति ते, तेरा अपने भाई के अंदर कोई स्नेह नहीं है। तू तो अपने भाई को ऐसे आवाज में प्रसन्न होकर के देख रहा है, सुन रहा है। देख तेरे चेहरे पर जरा से भी सिनक नहीं आई, क्या है? तुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारा भाई तुमको बुला रहा है, तुम यूं ही खड़े हो? या तो तुम अयोध्या में इतनी इतनी बातें करते थे, मुझे बड़ा संदेह हो रहा है तुम्हारे विषय में। राम जी ने तुमको किस प्रकार से अपना भाई मान लिया? कर्तव्यम ये निष्ठंत्या यत् प्रधानस्त्वम आगत है। देखो तुम्हारा जो भाव है वो समझ गई हूँ, ये भाव तुम्हारा किसी प्रकार से फल, इस प्रकार से जहरीली बात बोलती है, रो रही है, चिल्ला रही है। लक्ष्मण जी ने सीता से कहा कि देखो सीता जी, सारे देवता, सारे दानव, सारे राक्षस, सारे गंधर्व, सारे पन्नक, ये मिलकर के भी राम जी के साथ आ जाए लड़ाई करने के लिए, तो राम जी इनसे कभी हारने वाले नहीं है। हे देवी, देवताओं में, मनुष्यों में, पिशाचों में, किन्नरों में, पशुओं में और जो है पक्षियों में, दानवों में, कोई ऐसा है नहीं जो राम के सामने युद्ध में मुकाबला कर सके। राम वास्तव में इंद्र के समान अवध्य है। राम के लिए तुम ऐसा मत सोचो कि वो कहीं किसी प्रकार से संकट में पड़ गए हो। राम अवध्य है और नत्वाम मैं आपको इस वन के अंदर अकेला छोड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ऐसी मेरे लिए आज्ञा हुई है। मैं राम की आज्ञा के पालन के लिए यहाँ आया हूँ। इसलिए मैं आपको फिर याद दिला दूं कि सारे त्रिलोकी के देवता मिलकर भी राम का कुछ बिगाड़ नहीं कर सकते। अपने मन में शांति धारण करो, थोड़ा संताप दूर करो। अभी थोड़ी देर में उस मृग को मार करके राम जी यहाँ आ जाएंगे और वो सब बात बता देंगे कि ये बात कैसी है, झूठी है। देखो ये स्वर वास्तव में राम का नहीं है, इस स्वर में कुछ मिलावट पना है जिसको तुमने ध्यान से नहीं सुना होगा। न स तस्य स्वरो व्यक्तम न किंचित अपि दैवत है। राम का किसी प्रकार से ये स्वर नहीं है और न ये स्वर किसी देवता का है और न ये गंधर्वों का है। ये तो स्वर केवल उस राक्षस का हो सकता है जिस राक्षस ने मृग का रूप बनाया है। इसलिए घबराओ मत, इस माया के अंदर फंसो मत। एक माया है, माया सीता जी, माया उसको कहते हैं जो हमारी समझ में नहीं आए और हमारे उल्टे समझ में आए, उल्टा समझ में आए, उसका नाम माया होता है। देखो आपके ऊपर माया चढ़ गई ना, हमारे पर माया नहीं चढ़ी, हम समझ गए ये क्या बात है। इसलिए आप धैर्य धारण करो। हम लोगों का निशाचरों के साथ में बहुत बैर हो गया। आप विचार करो कि राम ने अकेले ने 14,000 निशाचरों को मारा है, खर दूषण को मारा है। उनके सेवक, चाकर, नौकर यहाँ रहते हैं, क्या वे अपने स्वामी का बदला नहीं लेना चाहेंगे? इसलिए वो तरह तरह की माया ही फैला सकते हैं। साक्षात युद्ध करने की तो किसी में भी ताकत नहीं है। साक्षात युद्ध खर ने किया था तो उसका क्या उसको परिणाम भोगना पड़ा? इसलिए हे सीता जी आप कोई चिंता न करो, आप शांति रखो। लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से कहा तो भी सीता जी बड़ी क्रुद्ध हुई और क्रुद्ध होकर के सीता जी फिर कठोर वाणी से लक्ष्मण जी को फटकारने लगी। लक्ष्मण को फटकारते हुए कहा कि अरे अनारी, अरे दुष्ट, निर्दयी, नृशंस, कुल पांसन माने कुल घाती, कुल कलंकी, मैं खूब अच्छी तरह से जान गई हूं कि तुझे राम जी के ऊपर आया हुआ संकट बहुत प्रिय लगता है। राम के संकट को देख करके तू कैसी ऊपर से मेरे सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता है। राम तो बड़े दुखी होकर सीते लक्ष्मण बोलते हैं तो मुझे बड़ी शांति की बात सुनाता है। लक्ष्मण तेरे अंदर पाप है। नहीं वो चित्रम सपत्नेशु पापम लक्ष्मण यद भवे, तुम्हारे जैसे कुल कलंकियों के पाप को किसी प्रकार से मैं फलीभूत होने नहीं दूंगी। तू बड़ा दुष्ट है, तुझे भरत ने कुछ न कुछ कान में बात कही है, तू भरत और उनकी राजनीति में फंसा हुआ है। सच बता लक्ष्मण, तुझे भरत ने चुपचाप यहाँ भेजा है कि नहीं कि तू राम को वहीं पर जैसे भी हो वन में मार देना या राम को तू वहाँ पर मरने देना ताकि ये राज्य है ये मुझे निष्कंटक रूप से मिलता रहे। ये सब राज्य की जड़ में समझ चुके हूँ। कमल नेत्र राम वो मेरे भरता है, उसके अलावा दूसरा मेरा कोई पति नहीं हो सकता। मैं या तो देखो राम मेरे पति है और यदि राम मर गए तो मैं तुम्हारे सामने अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लेकिन लक्ष्मण तुम्हारे खोटे संकल्प को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। मैं राम के अलावा किसी व्यक्ति को पुरुष के रूप में जानती भी नहीं हूँ। इसलिए लक्ष्मण तुम अपने मन का खोटा भाव है उस खोटे भाव को त्याग कर राम के पीछे जाओ। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि हे देवी, आपकी हर बात का उत्तर तो मैं दे नहीं सकता हूँ, लेकिन आपके ये वचन आपके अनुरूप नहीं हो रहे हैं, ये आपके कुल के अनुरूप शब्द नहीं है और ये आपके स्वयं के स्वभाव के अनुरूप भी शब्द नहीं है। हम जानते हैं कि स्त्रियों का स्वभाव होता है कि वो मर्म भेदी वाणी बोलती है। वो बोलते समय में ये विचार नहीं करती कि इस बात का परिणाम क्या होगा। स्वभावस्त्वेष नारीणाम, मनुष्यों में स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, जगह जगह देखा जाता है। वे अपने धर्म को छोड़ देती हैं, वो बड़ी बोलने में तीखी होती है और बड़ी चपल होती है। भेद वाली बात, द्वेष वाली बात वो पहले बोलती है। विमुक्त धर्माश चपला तीक्ष्णा भेद करा स्त्री है। ओहो सीता जी, मैंने आपको इन स्त्रियों के बीच में ऐसा नहीं समझा था। ओहो आपके इन वचनों को सुनकर के तो मैं तो यही बात मानता हूँ कि मुझे मेरे कानों के अंदर तपाया हुआ सोना है वो डाल देना चाहिए और आपकी बात की तरफ परवाह नहीं करनी चाहिए। परंतु आप मुझे बहुत बार बार प्रेरित कर रहे हैं। मैं बहुत दुखी मन से हे सीता जी मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। हे वनचरों, हे पक्षियों, हे वन के देवताओं, आप लोग इस विषय में साक्षी हैं। आपके सामने ये किस प्रकार से शब्द बोली है ये आप हमारे राम को बता सकती हो। राम न्यायवादी है। न्यायवादी यथा वाक्यम उक्तो हम परुषम त्वया। हे सीता जी, मैंने आपको बड़ी ठीक और युक्तियुक्त बात कही, उसके बदले में आपने मुझे इतना नीचा समझ लिया। आपने ऐसा समझ लिया कि मेरा भाव आपके प्रति खराब है, धिक्कार है आपको। यदि आप इस प्रकार से मेरे ऊपर शंका करते हैं तो आपका विनाश हो जाएगा। आप स्त्री होने के नाते आप ऐसी बात बोलती है ये अच्छी बात नहीं है। गुरु वाक्य व्यवस्थितम, ठीक है मैं तो अपने बड़े भाई के आदेश के अंदर बंधा हुआ था, इसलिए मैंने जाना उचित नहीं समझा है। लेकिन यदि आप जाना चाहते हैं, यदि आप मुझे भेजना ही चाहते हैं, तो ठीक है मैं जाता हूँ, आपका तो कम से कम कल्याण हो। और देवताओं आप सीता की रक्षा करना, मैं बहुत घोर अपशकुन देख रहा हूँ, बहुत बड़ा कोई दुर्वृत्त मुझे सुनने को मिले, ऐसे मेरे सामने लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अपित्वाम सहरामेण पश्येयम पुनरागत है, मुझे बड़ा संदेह लगता है कि मेरे चले जाने के बाद मैं आपको राम के साथ यहाँ बैठा देख लूं, मुझे बड़ा संदेह लगता है। हे सीता जी आप विचार कीजिए, आप विचार कीजिए, आप मुझे भेज तो रहे हैं लेकिन आप ये अच्छा नहीं कर रहे हैं। रोती हुई सीता ने फिर कहा, मैं गोदावरी में डूब के मर जाऊंगी, मैं यहाँ लताओं के अंदर फांसी खा करके मर जाऊंगी, मैं यहाँ किसी वृक्ष के यहाँ जो है अटक करके मर जाऊंगी, किसी गुफा में जाकर मर जाऊंगी, जहर खा करके मर जाऊंगी, यहाँ बहुत जहरीले वृक्ष है उनका रस निकाल कर मैं पी लूंगी, लेकिन मैं राघव के अतिरिक्त राम के अतिरिक्त किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी के मन में इतना दुख हुआ कि और इतना कहने के बावजूद भी इसके मन में कोई विचार नहीं आया, तो लक्ष्मण जी महाराज वहां से रवाना हुए। सीता जोर जोर से रो रही है और दुखाद उदरम प्रजगान है, वो छाती पीट पीट कर रोने लगी और सीता शोक के अंदर डूब गई। शोक में डूबी हुई सीता को लक्ष्मण जी ने कहा कि अब क्यों शोक करती हो सीता जी, अब मैं तो जा रहा हूँ, राम जी तो शोक के लायक नहीं है, राम जी पर तो वैसे ही शोक नहीं करना चाहिए, और आपको मेरे चरित्र पर कोई संदेह था तो मैं अब यहाँ से रवाना हो ही रहा हूँ, अब तुम शोक क्यों करती हो। इस प्रकार से सीता जी को शोक रहित करने के लिए बार बार कहा, और सीता जी को फिर उसने प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहा कि मैं खुद धर्म में बंधा हुआ हूँ, इसलिए एक तरफ तो आने वाले आप शकुन बताते हैं कि बड़ा दुर्वृत्त सुनने को मिलेगा, दुर्वृत्त माने खराब समाचार सुनने को मिलेगा, इधर राम जी का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं होते हुए भी आपने ऐसी बात कही है, इसलिए मुझे जाना उचित मालूम दे रहा, मैं जा रहा हूँ और आप यहाँ सावधानी से रहना। इस प्रकार से बड़े कठोर शब्द कहने के कारण से लक्ष्मण जी वहां से रवाना हो गए। लक्ष्मण जी रवाना होकर के राम जी की तरफ रवाना हुए, जिधर राम जी गए थे उसी रास्ते से वो रवाना हुए। पीछे से रावण अपने रथ के वहां पर छिपा हुआ तो था ही, उसने एक साधु का रूप बनाया। देखो साधु का रूप और ब्राह्मण का रूप, माने उसने ब्राह्मण का भी रूप बनाया, साधु का रूप बनाया। उसने परिव्राजक रूप अधिक परिव्राजक का रूप बनाया कि लक्षण काषाय संबित है, उसने कषाय वस्त्र पहने और कसे हुए कषाय वस्त्र, अच्छे कषाय वस्त्र पहने, शिखा रखी, एक छत्ता लिया और पैरों में उसने खड़ाऊ पहन ली। और अब देखो इसको आया नहीं रूप बनाना, हो वो बाएं हाथ में डंडा लेकर उस डंडे के अंदर कमंडल को डाल दिया है, कमंडलू होता है साधु के पास में दाहिने हाथ में होता है, लेकिन अब क्या करे वो, उसने डंडा लेकर डंडे को कमंडल में डाल दिया और कमंडल को लेकर के और डाल दिया और वो चला जा रहा है। ऐसा वो परिव्राजक का रूप बना करके और धीरे 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 लुकता हुआ छिपता हुआ चारों तरफ देखता हुआ आकाश में भी देखता हुआ कि कहीं कोई देवता लोग मेरे काम में बाधा तो नहीं डालेंगे, कभी आकाश में देखता है, कभी बाएं देखता है, कभी दाएं देखता है, कभी मुड़ करके पीछे भी देखता है, चारों तरफ से सावधान हुआ हुआ कभी छिपता है और कभी जो है चलता है, कभी बैठता है, ऐसे छिपता छिपता चलता 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 वो उस आश्रम के पास में आता है। आश्रम के पास में आता है तो उस समय में रहिताम सूर्य चंद्राभ्याम संध्या में वो महत्तम है, वह सीता को पास में पहुंच गया, आश्रम के पास में, दूर से देखता है सीता को। सीता कैसी है? सीता उस संध्या के समान है जिस संध्या में न तो सूर्य का प्रकाश है न चंद्रमा का प्रकाश है, ऐसी उस सीता को देखा। उसने सीता को देखा कि जो सीता रोहिणी के समान दिखाई दे रही है कि जो चंद्रमा से रहित है, चंद्रमा की पत्नी रोहिणी, चंद्रमा के बिना रोहिणी की शोभा नहीं होती, वो शोभाहीन रोहिणी के समान दिखाई दे रही है। जिस समय में रावण रवाना हुआ था उस पापी को देख करके सारे वृक्ष थे वे ऐसे कैसे खड़े रहे, किसी वृक्ष की हिलने डुलने की ताकत नहीं थी, वृक्ष सब जो फड़ एकदम कांप गए थे, वायु थी वो एकदम शांत हो गई, वायु इधर उधर साय साय करे, वायु की भी ताकत नहीं थी कि रावण के सामने वो इधर उधर चले। नदियों का जल था वो जहां का तहां रुका रहा, न तो पीछे से कोई जल आए और आया हुआ जल न आगे जाए, बस जो जल वहां था वहीं रह गया। और जिस समय वो चलने लगा उसके नेत्र थे बड़े लाल लाल, शंका भरी दृष्टि से वो देख रहा है सबको। उस समय में रामस्य त्वंतरम प्रेपसुर, उसने देखा कि अब राम वहाँ उसको मार तो दिया ही है, उसके बाद में यहाँ आएगा, इसमें जितने बीच का समय है इस बीच के समय में जो काम अपने को करना है सो कर लेना चाहिए। आते भिक्षु का रूप बना करके वो रावण वास्तव में बड़ा अभव्य है, लेकिन उसने बड़ा भव्य रूप बनाया। और जो भिक्षु के रूप में जब राम उनके पास में आया, भरतारम और सीता जी के पास आया, अभव्यो भव्य रूपेण है भरतारम अनुशोचती, सीता जो राम के लिए शोक कर रही थी वहां पर वो आश्रम में पहुंच गया। उस समय में सीता को ऐसे देखा जैसे चित्रा नक्षत्र हो जिसके पास में शनिश्चर हो, जब चित्रा को शनिश्चर देखता है तब समय ठीक नहीं होता है, तो रावण तो है शनिश्चर और सीता है चित्रा नक्षत्र। इस प्रकार से बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया हुआ वो रावण वास्तव में जिस कुएं के ऊपर तिनके लगाए हुए और कुआ ऊपर से ढका हुआ हो लेकिन अंदर वो थोथा है और मारक होता है, ऐसा वो रावण ऊपर से बड़ा अच्छा रूप बनाया, खूब बढ़िया दाढ़ी है, जटा है, चोटी है और अच्छा रूप बना करके और वो राम जी की पत्नी सीता के आश्रम के वहां पर आया, सीता को देखने लगा। सीता के दांत बड़े अच्छे हैं, सीता का जो है कपड़ा बहुत अच्छा है, सीता के जो नेत्र है वो नेत्र बड़े अच्छे हैं, सीता के एक एक अंग को उसने देखा और देख करके हृष्ट चेता उसके चित्त में बड़ी प्रसन्नता हुई और ब्रह्म घोषम उदीरयन जोर जोर से उस आश्रम में आकर ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्रश्रवाहा ऐसे जोर जोर से बोलने लगा, वो वेद मंत्र बोलने लगा। वो सीता जी उस समय में एकदम चौंकी की आवाज कहां से आई, तो सीता जी बैठी तो थी वो एकदम जो है चौंक गई। और ताम उत्तमाम त्रिलोका नाम पद्म ही नाम श्रियम, एक वो ऐसी सीता थी जो संपूर्ण त्रिलोकी में सबसे श्रेष्ठ सुंदर स्त्री और पद्महीन लक्ष्मी के समान, जिस लक्ष्मी के हाथ में पद्म नहीं होता कमल नहीं होता उस लक्ष्मी की जैसी शोभा, ऐसी सीता को उसने देखा। और देख करके रावण बड़े उच्च स्वर में सीता को सुनाते हुए कहने लगा, रौप्य कांचन वर्णा भी पीत कोशेय वासिनी, बड़ा सुंदर पीला वस्त्र पहनने वाली और स्वर्ण के समान देदीप्यमान आभा वाली, कमलों की बड़ी सुंदर माला को धारण करने वाली, साक्षात पद्मिनी का रूप धारण करने वाली आप कौन हो? कोई आप लक्ष्मी हो, कोई आप अप्सरा हो, कोई आप री हो, श्री हो, कीर्ति हो, कौन है आप? या साक्षात कामदेव की पत्नी आप रति हो, कौन हो आप? आप जो है बड़े सुंदर मालूम देते हो, आपके नेत्र हैं वो बड़े अच्छे हैं, आपके नेत्रों के यहाँ बड़ा अच्छा जो है स्वरूप दिखाई दे रहा है, और आपके हाथ हैं ये भी बड़े अच्छे हैं, आप आपके दांत हैं वो पांडुरा बिल्कुल सफेद दांत बहुत अच्छे हैं। हम आपकी महिमा के लिए क्या कहें कि आपके हर जगह से सौंदर्य प्रकट हो रहा है, आपका मुस्कुराना और उस मुस्कुराते हुए चेहरे से देखना ये बहुत अच्छा लगता है। जिस प्रकार से जल के द्वारा नदी का तट ढह जाता है, उसी प्रकार से हम भी आपकी सुंदरता देखकर इसमें ढह गए, इसमें मोहित हो गए हैं। तुम्हारे केश भी बड़े सुंदर हैं, हम तो बहुत जगह घूमने वाले हैं, इसलिए देवताओं में ऐसा रूप नहीं देखा, गंधर्वियों में नहीं देखा, यक्षियों में नहीं देखा, किन्नरों में नहीं देखा, ऐसा सुंदर स्वरूप आपने जो हमको दिखाया है या हम यहाँ देख रहे हैं, ऐसा सुंदर स्वरूप आपने हमारी कृपा हमारे पर कृपा करने के लिए दिखाया है। ओह यह वासश्च कांता रे, आप इस जंगल के अंदर बैठी हो और यहाँ पर बैठी बैठी आप चिंता करती हो। ओह आप जैसी स्त्रियाँ यहाँ जंगल में रहे, ये भी एक हमारे चित्त में क्षोभ पैदा करने वाली बात है। हम तो यही चाहते हैं कि आप जंगलों में न रहो, आप तो श्रेष्ठ महलों में रहो। आप कौन है हमको पता नहीं है, लेकिन हम आपको ये सलाह देते हैं कि देखो आप इस घोर घनघोर राक्षसों के स्थान में कैसे बैठी हो। यहाँ राक्षस लोग बहुत घूमते रहते हैं, आपको पता नहीं है राक्षस यहाँ बहुत विचित्र विचित्र वेश बना करके आते हैं, और कभी कभी तो ऐसा सुंदर वेश बनाते हैं जैसे वो बड़े साधु और तपस्वी हो, लेकिन ये आकर के और छल बहुत करते हैं। इसलिए आपको महलों में जाकर रहना चाहिए, आपको उपवनों में रहना चाहिए, आपको सुगंधित वस्तुओं में रहना चाहिए, आप जो है बड़े अच्छी जगह रहो, अच्छी तो माला पहनो, आप सुगंधित वस्तु रखो, अच्छे वस्त्र पहनो, और आप कोई एक अच्छा अपना पति चुन लो, आप अपने मन में किसी को अच्छा पति चुन लो, क्योंकि आप बहुत सुंदर पति के योग्य हो, आप सामान्य पति के योग्य नहीं हो। आप हैं कौन इसका मुझे अभी परिचय का मालूम नहीं है, लेकिन आप रुद्रों में से हो या मरुदगणों में से हो या वसुओं में हो या देवताओं में हो, कौन हो आप मैं पहचान नहीं सका हूँ, मैंने अपनी बुद्धि बहुत लगाई है, लेकिन गंधर्वों में ऐसा कोई मुझे दिखाई नहीं दिया, देवताओं में किन्नरों में कोई ऐसा स्वरूप मुझे दिखाई नहीं दिया, ये राक्षसों का वास है देवी, यहाँ कैसे बैठी हो? यहाँ देखो सिंह है हरदम दहाड़ते रहते हैं, यहाँ व्याघ्र है वो चीते वगैरह वो किसी को छोड़ते नहीं है, भेड़िए जंगली भेड़िए भी बहुत खतरनाक होते हैं, यहाँ के मृग हैं वो भी बड़े खतरनाक होते हैं, सींग उनके बड़े तीखे होते हैं, यहाँ के रीछ हैं और दूसरे हैं पशु बड़ी क्रूर आवाज करते हैं, इन सब को सुनते हुए आप डरती नहीं हो? आप इस आश्रम में अकेली कैसे रहती हो? ये इतना घनघोर जंगल क्या आपको डर नहीं लगता है? आप कोई सामान्य स्त्री तो नहीं हो सकती हो, क्योंकि अकेली आप जंगल में रहती हो तो बड़ी निर्भीक होकर के रह रही हो, और वो भी राक्षसों के जंगल में, और वो भी दंडकारण्य में। यदि आप नाराज न हो तो आप बताइए कि आप किसकी बेटी हैं और आप किसकी पत्नी हैं? आपका दंडकारण्य में आना क्यों हुआ है? आप अकेले क्यों रहते हो? राक्षसों से आपको क्यों नहीं भय लगता है? ऐसे वो सीता जी को लुब्ध करते हुए वचन रावण कहने लगा। सीता जी उस रावण को कि जो साधु का वेश बनाया हुआ है उसको अपने वहां आया देख करके पहले तो उसकी पूजा की, हे ब्राह्मण देवता मैं आपकी पूजा करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ, आइए आइए, ये चटाई, इस चटाई पर आप विराजमान होइए, बहुत दूर से आप कृपा करके यहाँ आए हैं, मेरे पास में बहुत अच्छे फल हैं, मैं अभी फल लेकर के आती हूँ, और देखिए ठंडा जल है, आप जल पीजिए, और अभी थोड़ी देर में मेरे पति अपने देवर के साथ आने ही वाले हैं, वो भी जंगल में कन्नमूल फल लेने ही गए हैं, लेकिन आपकी सेवा के लायक मेरे पास फल रखा हुआ है, आप उस फल को लीजिए और लेकर के आप अतिथि धर्म का पालन करने के लिए हमको सहयोग दीजिए। अशक्यम उद्वेष्ट मुदा ये दर्शनात् न्यमंत्र यद् ब्राह्मणवत् तथागतम्। बिचारी सीता जी को क्या पता था कि इस रावण के मन में क्या भाव है, सीता जी को क्या पता था कि इस ब्राह्मण के वेश में यह कोई इसी का शत्रु छिपा हुआ है, कुछ भी पता नहीं।